نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صحیح بخاری کی اگلی نشست کا آغاز کرتے ہیں. کتاب الایمان یعنی ایمانیات میں سے باب نمبر 29 احب الدین الى الله ادومه. اللہ کو وہ عمل بہت پسند ہے جو ہمیشہ کیا جائے. اور حدیث نمبر 40 سے ہم شروع کریں گے. کتاب پر اگر پیج دیکھیں تو پیج نمبر 103 کا بالکل آخری حصہ. آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کو کون سے عمل پسند ہے. عن عائشة رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہا وعندها امرأة قال من هذه قالت فلانة تذكر من صلاتها قال مح عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا وكان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه. بہت ہی خوبصورت حدیث ہے. ترجمہ دیکھتے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کے پاس تشریف لائے. وہاں ایک عورت بیٹھی تھی. آپ نے پوچھا یہ کون ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا یہ فلاں عورت ہے اور اس کی کثرت نماز کا حال بیان کرنے لگے. آپ نے فرمایا رک جاؤ, تم اپنے ذمے صرف وہی کام رکھو جو ہمیشہ کر سکتے ہو. اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ ثواب دینے سے نہیں اکتاتا, تم ہی عبادت کرنے سے تھک جاؤ گے. اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اطاعت کا وہ کام ہے جس کے کرنے والا اس پر ہمیشگی کرے. بہت ہی خوبصورت بات ہے. اس میں سے آئیے ذرا عمل کی باتیں لیتے ہیں. پہلی بات یہ کہ اس سے سمجھ آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملنے کے لیے خواتین آتی تھیں. پہلا مسئلہ کیا ملا کہ عورت عورتوں کو ملنے کے لیے جا سکتی ہے. اور سوشلائزنگ جب ایک خاص مقصد کے لیے ہو, خاص حد تک ہو, تو یہ پسندیدہ بھی ہے. شرط یہ ہے کہ وہ ساری پابندیاں سامنے رکھی جائیں جو کسی بھی عورت کے باہر آنے کی ہیں. دوسری بات دیکھیے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور عورت وہاں بیٹھی تھی تو آپ نے پوچھا یہ کون ہے, تو اس کے جواب میں آپ نے اس عورت کا ذکر کیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک غیر مرد بھی کسی عورت کا نام پوچھ سکتا ہے. آپ کے شوہر آئیں, پوچھے گھر میں کون آیا ہوا ہے, تو کوئی بات نہیں, بتا دیں میری دوست آئی ہیں یا کوئی آیا ہے. اب اس سے بڑھ کے نہیں, یعنی اب اس پہ روک کے صرف اتنا کہہ دوں کہ پھر یہ نہ ہو کہ وہ آپ سے زیادہ آپ کی دوست سے ہی باتیں کرنے لگ جائیں. تو جہاں اسلام ہوگا, پردہ ہوگا, وہی بات اصل دین ہوگا, تو وہ مرد تو وہاں آ کے نہیں دیکھے گا. تبھی تو پوچھ رہے ہیں کون آئی ہیں. یہاں سے تیسرا مسئلہ نوٹ کیجیے کہ عورتیں اگر گھر میں آتی بھی ہیں اور وہاں گھر والوں کے مرد بھی ہیں تو ان سے الگ بیٹھیں گی. اگر عورت کو اللہ کے نبی دیکھ لیتے تو پھر تو وہ خود ہی جان دیتے کون ہے. ٹھیک ہے. پھر اگلی بات دیکھیے کہ حضرت عائشہ سے جب آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہے, تو صرف انہوں نے اس کا نام بتانے سے زیادہ اس کی خوبی بیان کرنی شروع کی. یہ ہم عورتوں کی عادت ہے. ہم دوسری اپوزٹ جینڈر انہیں اپنے مردوں کے سامنے کرتے ہیں. حکم کیا ہے حدیث میں, اس میں ایکسٹریم پہ نہ بھی جائیں تو بیلنس ہی سوچ سمجھ لیجیے, کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی بیوی اپنی سہیلی کی تعریف اس طرح سے اپنے شوہر کے سامنے نہ کرنے لگ جائے کہ وہ اس کو ایسے دیکھے جیسے آنکھوں سے دیکھ رہا ہے. وجہ کہ رغبت پیدا ہوگی, شوق آئے گا, پھر کمپیئر کرے گا. تو بہت کم بات کیا کریں اپنے مردوں سے دوسری عورتوں کے بارے میں. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے اپوزٹ جینڈر ہونے کی وجہ سے کچھ نہ کچھ کشش تو رکھی ہے, اور پھر تقابل کا بھی جذبہ ہوتا ہے, تو ضرورت سے زائد بات نہیں کرنی چاہیے. پھر تیسری بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ نے تھوڑی ایگزیجوریشن کی کہ بہت نمازی ہے. جیسے ہم کہتے ہیں بڑے نمازی, کیا بتائیں کیسی ہیں, تو اللہ کے نبی نے کہا رک جاؤ, رکو, سٹاپ. یعنی کسی کے سامنے اس کی تعریف نہ کرو. علیکم بما تطیقون, ذمہ لو اپنے وہ چیز جس کی تم طاقت رکھتی ہو. اب اس میں دو باتیں ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ کو تھوڑا سا ڈسکریج کیا آپ نے کہ کسی کی تعریفیں اتنی نہ کرو. آپ الگ سے بھی حدیث پڑھیں گے انشاءاللہ کہ کسی کے منہ پہ آ کے اس کی تعریفیں کرنا, اس کو کن چھری سے کاٹنا. دوسری بات یہ ہے کہ اب ہمیں نہیں پتا کہ اس کی کیا نماز کی کیفیت تھی، ساری رات ہی جاگتی رہتی ہے یا سوتی نہیں ہے، تو اس پہ اللہ کے نبی نے کہا کہ نہیں، اللہ کو اتنی لمبی نمازیں نہیں پسند کہ تم ساری رات جاگتے رہو. بات سمجھ گئے؟ یہاں پھر وہی دین کا تناسب آ رہا ہے. آپ نے فرمایا تم وہ کام کرو جو کر سکتے ہو. پتا چلا آپ ایک رات پوری جاگے، اگلے دن بچوں کے بھی کام ہے، گھر کے بھی کام ہے، آدھے دن کے بعد سر میں درد ہو رہا ہوگا، آپ سر پہ دوپٹہ باندھ کے بیٹھ جائیں گے. اب میاں آئیں گے تو آپ کا موڈ خراب ہے، بچوں کو آپ خلق سے ڈانٹیں گے، تو آپ کا وہ پوری رات کا جاگنا آپ کو فائدہ نہیں دے گا. یہاں سے دیکھیے کیا دین و یسر. دین آسان کب ہے؟ جب اس کو اس کی لمٹس میں رکھے. مطلب دیکھیے کہ کھانے میں نمک نہ ہو تو کھانا نہیں کھایا جاتا، اور وہی دو چمچ کی جگہ چھ چمچ ڈال دیں تو کھا لیں گے، تھوک دیں گے لوگ. چینی کتنی مزے کی لگتی ہے، تو آپ ایک چمچ ڈالیں اچھی، دو ڈال دیں اٹس فائن، تین آپ چھ چمچ چینی کے چائے میں ڈال دیں تو وہ چینی کڑوی ہوگی. ریشیو اینڈ پرپورشن. ایک چھوٹا سا کیک آپ بناتے ہیں نا تو پوچھتے ہیں کتنے انڈے، کتنا دودھ، کتنی چینی، کیونکہ کیک سافٹ بھی ہو، مزے کا بھی ہو، ڈائجسٹو بھی ہو. اور اگر ایک کیک بناتے ہوئے یہ ریشیو پرپورشن بدل دیں کیا ہوگا؟ آج ہم مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم نے دین کا ریشیو اینڈ پرپورشن غلط کر دیا. بعض دفعہ لوگوں کو وہ کہانیاں سناتے ہیں، جیسے آپ پڑھ کے دیکھیں ہمارے ہاں دین کے نام پہ جو کتابیں معروف کی جاتی ہیں اور اس میں کہانیاں، بالکل کسی کا آنکھوں دیکھا واقعہ. وہ کہتی کہ میں ایک جگہ گئی تو کوئی سسٹر درس دینے آئی ہوئی تھی وہاں، تو یہ بھی بیٹھ گئی، تو انہوں نے کیا ثابت کیا؟ اچھی بیوی کی خوبیاں بتا رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ تمہیں پتا کہ اچھی بیوی کون ہوتی ہے؟ کہا بھی کون ہوتی ہے؟ تو کہا اچھی بیوی وہ ہوتی ہے کہ جو میاں کے آنے سے پہلے آٹا گوندھ کے رکھتی ہے، پھر توا چلا کے رکھتی ہے، اور توے پہ ایک روٹی ڈال بھی دیتی ہے، ایک پیڑا بھی بنا، یعنی ہر سٹیج پہ ایک روٹی ہے، اور پاس ایک ڈنڈا بھی رکھ لیتی ہے. کہا اچھا پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ سب کیوں؟ کیونکہ اگر اس کا میاں ہے، اگر اس کا فوراً گرم گرم روٹی کھانے کو دل ہے تو توے سے اتار کے دے دے، ٹھنڈی کھانی ہے تو جو ایک پہلے کی پکی ہوئی ہے وہ دے دے، اور اگر اس کو ساتھ ساتھ چاہیے تو پھر اس کو ساتھ ہی وہ اتار کے پکا کے دے دے، صبر کرتا ہے. کہا اچھا یہ سب تو بتاؤ، یہ ڈنڈا کیوں رکھا ہے؟ کہا ان سب کے بعد بھی اگر میاں کا دل کرے ڈنڈے سے مارنے کا تو اس کو اس ڈنڈے سے مارنے کے لیے بھی تیاری کر کے رکھے. اب آپ بتائیے یہ حدیث سن کے آپ جیسی کوئی مہذب پڑھی لکھی شائستہ خاتون وہاں جائیں، آپ اگلی دفعہ جائیں گی اس کلاس میں؟ ہائے یہ تو ڈنڈے مروانے والا دین ہے، یہ غلط ہے. یاد رکھیے دین اتنا خوبصورت ہے، شوہر سے پیارا دوست کوئی نہیں آپ کا، بیوی سے پیاری ساتھی کوئی نہیں آپ کی، شرط یہ ہے کہ آپ ریشو پرپورشن رکھیں. تو جب ہم لوگوں کا ایسی، اب یہ فضائل روایتیں جب سناتے ہیں، حضرت عائشہ اور حضرت علی پہ لوگوں نے بے باک باتیں کی ہوئی ہیں، واللہ کبھی پڑھ کے دیکھیں حکایت کتابیں اور فضائل اور کیا کچھ بزرگوں کے نام پہ کیا کیا کہانی ہے. کہا نہیں، بیلنس رہو، اسمائلی رہو، خوش رہو، اچھے طریقے سے رہو، اور یہ دیکھیے کہ تم تھک جاتے ہو نیکیاں کرتے ہوئے، اللہ نہیں تھکتا اجر دیتے ہوئے. تھوڑا بھی کرو گے اللہ کو اچھا لگے گا. اور احب الدین، سب سے پیارا دین اللہ کو کیا ہے؟ ماں داوما، داوما کے دوام سے، اردو میں بھی بولتے ہیں نا دوام، قرآن پاک میں آتا ہے ماں دامت السماوات والارض، تو وہی لفظ ہے قائم رہنا، یعنی تم جس کام پہ قائم رہو وہ زیادہ پسند ہے. یہاں تو اتنی بات ہے نا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ان احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل، اللہ کو وہ کام پسند ہے جو روز کیے جائیں، کنٹینیوسلی کیے جائیں، چاہے وہ تھوڑے سے ہوں. حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے ایک موقع پہ پوچھا کہ بلال میں نے تیرے قدموں کی چاپ اپنے سے پہلے جنت میں سنی ہے، تیری کیا نیکی ہے؟ کہا اللہ کے نبی کوئی نیکی تو نہیں سمجھ آتی، بس یہ کہ جب وضو کرتا ہوں تو دو نفل پڑھ لیتا ہوں وضو کی نیت سے. کہا تیرے یہ دو نفل تجھے جنت میں لے گئے. اب دو پڑھتے تھے نا، سو تو نہیں پڑھے، روز پڑھتے تھے، عمل تھا. تو آج سے میں اور آپ بھی کوئی چھوٹی سی نیکی کی نیت کرتے ہیں کہ جس کو میں نے پھر کنٹینیو کرنا ہے. آپ کو بھی اپنی زندگی میں لوگوں کے ہمیشگی کے کام اچھے لگتے. آج جس کلچر میں ہم جیتے ہیں وہ کیا؟ مدر ڈے، ایک پھول ماں کو دے دو، پیالے پہ آئی لو موم لکھا ہوا دے دو، ایک ساتھ پھولوں کا بکٹ دے دو، اور پورا سال پوچھو بھی نا. یہ فادر ڈے ہے، یہ مدر ڈے ہے، یہ ویلنٹائن آ گیا، یہ ادومو تو نہیں ہے نا. کون سی ماں یہ چاہے گی کہ اس کا بچہ ہر سال میں ایک بار پھول کے ساتھ کوئی چھوٹی سی ڈائمنڈ کی رنگ بھی دے دے، اور پورا سال پھر اپنی مرضی سے ملے نہ ملے. آپ کہتے ہیں بیٹا روز شکل دکھا جایا کرو، کچھ بھی نہ لو، مجھے تو یہ اچھا لگتا ہے کہ میں تمہیں دیکھوں. تو انسانی معاملات میں یہ سب کچھ ہے تو پھر اللہ کے ساتھ کیوں نہیں؟ تو دین میانہ روی، ماڈرنزم، نارمل، دین سے زیادہ خوبصورت طریقہ زندگی ہی کوئی نہیں ہے. تو دین کے نام پہ بہت سختی کرنا یہ مکروہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ اپنی بیوی کے گھر میں آئے تو دیکھا دیوار پہ ایک رسی باندھی ہوئی ہے، कहा भाई ये क्या? कहने लगी रात को तहज्जुद के लिए खड़ी होती हूँ, फिर ऊँघने लगती हूँ, तो ये रस्सी इसलिए रखी है कि इसके साथ अपनी चुटिया बांध लेती हूँ, तो जब नींद में ऊँघती हूँ ना तो जब चुटिया खिंचती है तो मेरी आंख खुलती है। तो आपने कहा कि अपने ऊपर ये सख्ती ना करो। आज हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा तकलीफ के साथ कहने की ज़रूरत है कि हलाल हराम की तो इतनी फिक्र कोई नहीं, उसमें तो सब जायज़ है, और इबादात के नाम पे इस किस्म की सख्तियाँ, और मारूफ कर देते हैं ये बहुत पहुँचा हुआ शख्स है, ये बड़े नेक है, ये तो कभी सोए नहीं, और ये तो कभी बिस्तर पे लेटे नहीं, और ये तो ज़मीन पे बैठ के खाते हैं। हम लोगों को इन चंद कामों में मुकैद करके खुली छुट्टी दे देते हैं। तो ज़रूरत है इस बात की कि हम किसी न किसी अच्छे काम की नीयत करें। मैं आपको 3 सेकेंड देती हूँ, खुद को भी, कोई एक नीयत कर लें। कई कर सकते हैं ना, फ़र्ज नहीं कोई पूरा करते तो फ़र्ज़ को पूरा करने की आज नियत करते हैं, नफिल कर ले, जैसे मिसाल है कि हज़रत बिलाल 2 नफिल पढ़ते थे, हम भी पढ़ सकते हैं, या कोई 3 सेकंड तक हम सब गौर करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें अमल की तौफीक दे। आइए आगे देखते हैं, अगला बाप है बाप ज़ियादतुल ईमानी व नुकसानुहु, ईमान की कमी और बेशी। ज़ियादतु ज़्यादती, अल ईमानी ईमान में, व नुकसानुहु और उसमें कमी। क्या पता चला इस टॉपिक से कि ईमान कभी घटता भी है कभी बढ़ता है। शायद सबसे खूबसूरत हदीस होगी इस टॉपिक की, आइए इसको देख के तो फिर हम इस पर बहुत इंशाल्लाह डिटेल से बात करेंगे। मेरे साथ हदीस को दोहराइएगा। अन अनसिन रदियल्लाहु अन्हु अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल। अब आगे से ब्रैकेट हदीस के अल्फाज हैं, ये शुरू मैं बोलती रहूंगी, बाद में आप खुद ही यूज्ड होंगे। और मेरे यहाँ रोकने का मतलब क्या था कि अब अपनी आवाज़ में और मोहब्बत लाएं, प्यार लाएं, जैसे अल्लाह के नबी के कदम पे कदम रखें तो खुशी है कि ये वो लफ्ज़ हैं जो प्यारे नबी की ज़ुबान मुबारक से निकले हैं और मैं इस गुनाहगार मुँह से बोल रही हूँ, अल्लाह इसके पढ़ने की वजह से मेरे मुँह के गुनाहों को माफ़ कर दें। दिल में प्यार से मोहब्बत से इन हदीसों को पढ़ेंगे तो आपको इंशाल्लाह अल्लाह के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी कुर्ब महसूस होगा। क्या अल्फाज मुबारक है आपके, यखरुजु मिनन नारी मन कौला ला इलाहा इल्लल्लाहु वफी कल्बिही वज़्नु शईरतिन मिन खैर, वयखरुजु मिनन नारी मन कौला ला इलाहा इल्लल्लाहु वफी कल्बिही वज़्नु बुर्रतिन मिन खैर, वयखरुजु मिनन नार मन कौला ला इलाहा इल्लल्लाहु वफी कल्बिही वज़्नु ज़र्रतिन मिन खैर। तर्जमा देखते हैं इस हदीस का। हज़रत अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि आपने फरमाया यखरुजु मिनन नारी मन काला, निकाल दिया जाएगा आग में से जिसने ये कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, यानी जिसने एक बार भी ये कह दिया कि ला इलाहा इल्लल्लाह, और ऑफ कोर्स दिल की नियत से कहा, यह तो नहीं कि राह चलते कहीं लिखा हुआ पढ़ दिया, तो अल्लाह ताला बिल आखिर उसको जहन्नम से ज़रूर निकालेगा, उसके गुनाहों को माफ़ करवाने और उसकी सज़ा देने के बाद बिल आखिर वो ज़रूर आएगा। शर्त क्या है कि वफ़ी कल्बी ही, और बीच उसके दिल के, वज़्नु वज़न शईरतन शईरतन मिन खैरिन, शईरा कहते हैं जो छोटी सी चीज़, यानी जो देखे हुए ना बाले को शायद कहते हैं ना, कि जिसके दिल में जौ के बराबर भी नेकी होगी अल्लाह उसको बिल आखिर जहन्नम से ज़रूर निकालेगा। व यखरुजु मिनन नारी, और आग से उसको ज़रूर निकालेगा, मन काला, और जिसने कहा, यानी आपने वही बात दोबारा दोहराई, जिसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाहु नहीं कोई इलाह मगर अल्लाह, वफी कल्बी ही और उसके दिल में, वज़्नु बराबर या वज़न बुर्रतन गंदुम। अब आपको दो ग्रेन्स के नाम पता चल गए, शईरा कहते हैं जौ को और बुर्रा कहते हैं गंदुम को, मिन खैरिन खैर के दाने के बराबर, व यखरुजु मिनन नार, फिर तीसरी बार वही बात कही, अल्लाह उस शख्स को ज़रूर आग में से निकालेगा, मन काला ला इलाहा इल्लल्लाहु जिसने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, वफी कल्बी ही और उसके दिल में, वज़्नु ज़र्रतिन ज़र्रे बराबर भी, मिन खैरिन खैर हो। दो चीज़ें तो समझ गए, शईरा जौ को कहते हैं बाहरले सीड्स, बुर्रा कहते हैं वीट के सीड्स को, तो ज़र्रा क्या है, सूरज की शुआएं कभी आपने बिल्कुल किसी सुराख में से अंदर आती देखी होंगी, तो उसको जब आप अपनी खाली आंख से देखते हैं तो आपको उसमें छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखते हैं, इंग्लिश में उसको बल्कि पार्टिकल्स ही कहते हैं, उसको जर्रा कहते हैं। इतने बारीक जर्रे होते हैं कि लाखों की तादाद में होते हैं इतनी सी जगह के अंदर, यानी इतनी थोड़ी सी चीज भी अगर होगी तो अल्लाह ताला उस बंदे को बिल आखिर ईमान की वजह से जहन्नुम से निकाल देगा। अब इस हदीस को पढ़ने के बाद हकीकत में बहुत कुछ कहने को दिल करता है, यानी एक पूरा टॉपिक है, मैं तो इसको यही कहूँगी, और अल्हम्दुलिल्लाह इस मौजू पे बहुत बात की है, लेकिन आप सबका भी हक है क्योंकि आप हदीस रसूल पढ़ रहे हैं तो हम इसको थोड़ा सा समझते हैं। ईमान क्या है, मैं आपको इस हदीस को समझने के लिए एक मिसाल देना चाहूंगी। आप अपने घर में एक आर्टिफिशियल पौधा लेकर आते हैं, बड़ा खूबसूरत सजा हुआ प्लास्टिक का कोई भी डेकोरेशन पीस है, आप उसको इस दीवार के साथ रख दें, एक दिन, दो दिन, छह दिन, दस दिन, आप एक साल बाद भी देखेंगे वो बिल्कुल वैसे ही होगा, अगर टेक केयर अच्छी करेंगे तो वो नया भी रहेगा, मट्टी पड़ी हुई है तो गंदा भी हो जाएगा, लेकिन वो ना तो ये होगा कि अगले दिन जाएं तो वहां चार की जगह पांच फूल हो, और ये भी नहीं होगा कि जो चार फूल आज खिलखिला रहे थे तीन चार दिन के बाद वो मुरझाए हो। ठीक है, इसके बरक्स आप एक और फूल लेके आते हैं, फ्रेश फ्लावर का गुलदस्ता, नीले पीले लाल हर रंग के फूल है, आप उसको लाके इधर रख देते हैं, हर आने वाले दिन में क्या होगा, अगर आप उसको पानी ना दें, सूरज की रोशनी ना पड़े, चंद दिन के बाद उस गुलदस्ते का क्या हाल होगा, पहले तो मुरझाएगा और अगर आप छोड़ देंगे तो उसमें कीड़े पड़ जाएंगे और बू हो जाएगी, अगर आप 10 दिन के लिए घर बंद करके जाएं और फ्रेश प्लांट छोड़ जाएं, घर आने तक सारे घर में वो सीलन की स्मेल हो चुकी होगी। बस ये जो प्लास्टिक का फूल है ना, ये आर्टिफिशियल ईमान है, नकली चीज है, वो जो रियल फ्लावर्स है ना, ये है ईमान। बढ़ता कब है, जब आप उसको पानी देते हैं, जब आप सूरज की रोशनी में रखते हैं तो फूल बहुत रहते हैं, और अगर साथ मिट्टी और गमला भी साथ हो तो वो एक साल तक भी रह सकता है। ऐसे कई फूल हमारे घरों में मौजूद हैं, यहां मैंने इतना ट्रेंड नहीं देखा, अमेरिका में बहुत रिवाज है, यहां तो लोग फूल देते हैं ना, तो वहां पूरे प्लांट देते थे, प्लांट साथ लगा होता है, और कई ऐसे रखे हुए हैं साल हर साल से, बस पानी देते जाओ, कुछ सिर्फ पत्ते हैं, कोई डंठल है। अब होता क्या है कि ईमान दिल में आया, इसको पानी दें, ईमान का पानी क्या है जो इस वक्त आपको मिल रहा है, इल्म। कुरान पाक की बहुत सारी मिसालों से, हदीसों से इल्म को बारिश के पानी से तशबीह दी गई है। ये जो आप और मैं हदीस सीख रहे हैं ना इस वक्त, आपका क्या ख्याल है कि आपको इससे इल्म मिल रहा है? इल्म लेना क्या मुश्किल है, उर्दू में हदीसें पढ़ लें बड़ी वाजे हैं, आप इल्म के साथ साथ यहां से ईमान ले रहे हैं, यकीन बढ़ता है। एक महफिल में बैठ के सुनना और परे होके सुनना, दूसरे कमरे में सुनना, जमीन आसमान का फर्क है। तो ईमान को पानी दे। अच्छा, रोशनी क्या? अब आपका ईमान था और आप एक बहुत रोशन जहन में थे, खुले दिल के थे, नेगेटिविटी नहीं है आपके अंदर, तासुब नहीं है, फिरके वारियत नहीं है, दीन वालों के खिलाफ नहीं है, तो आपका ईमान फलेगा, आपको अल्लाह का हर बंदा अपना भाई बहन लगेगा। हदीस में आता है, अल-खल्कु यालुल्लाह, ये सारी मखलूक अल्लाह का कुंभ है, तो जिसने अल्लाह से प्यार किया वो अल्लाह के बंदों से प्यार करेगा। हदीस में आता है कि अल्लाह को अपने हर बंदे से 70 माओं से ज्यादा प्यार है। तो जब अल्लाह को तो प्यार है और हमारा हाल क्या? अल्लाह की बना। मुझे किसी ने बड़ी तकलीफ दे सकलिप भेजा, एक मुबल्लिग हैं, स्पीकर हैं, तो वो कहानी सुना रहे थे कि आज मुसलमान दूसरे मुसलमानों के बारे में फिरकावारियत और गिरोहबंदी की वजह से कितने जुल्म का शिकार है। वो जो ब्रदर थे, वो उनका कोई एक्सपीरियंस ऐसा था कि वो लोगों की एक जमात बनाकर कहीं तबलीग के लिए गए, कहते दूर पार का एक गांव था, हम गए, किसी से पूछा, बहरहाल उन्होंने मस्जिद खोल दी, हम वहां बैठ गए। उसके बाद नमाज का वक्त हुआ तो इमाम साहब या कोई आए, किस्सा मुखसिर, यानी मुझे तो उस तरह सुनानी भी नहीं आएगी जैसे वो सुना रहे थे, और मेरा दिल रो रहा था जैसे बाकी बसीजों तो खून टपके। वो कह रहे हैं कि वो इमाम साहब ने आके जो हमें गालियां देनी शुरू करी, मैं वो लफ्ज ना बोलूं लेकिन उन्होंने दो से ज्यादा तीन दफा बोला कि वो कहते हैं ये कुत्ते आ गए मस्जिद में, इनको निकालो और मस्जिद को दो, ये तबलीगी कुत्ते हैं। वल्लाही, कैन यू बिलीव, कहते हैं ये हाल था कि वो मस्जिद किसी और सोच की थी, हमें उन्होंने तबलीगी जमात समझा, क्या हुआ कि हमारा सामान उठवा के बाहर भेजो और इतनी गालियां दी। अब वो आने वालों को भी हम छोड़े, वो कौन थे और जिन्होंने ये कहा, हम अपने ऊपर ले। आज उम्मत मुस्लिमा का ईमान दिखता है? देखिए, ईमान की तो एक रानाई होती है, आपके कमरे में एक खूबसूरत फूल और एक फ्रेश प्लांट पड़ा, उसकी खुशबू आती है, उसके रंग अच्छे लगते हैं। क्या आज इस्लाम का रंग दिखता है? आज हमारे मुसलमानों को हो क्या गया? हम सब अपने ऊपर इसको लेकर सोचें कि क्या मेरा ईमान है, फिर आप इसको अपने ऊपर लें, आप छोड़ दीजिए बड़े लेवल पे। यहाँ बस एक दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारी उम्मत को फिरका वारियत से बचा। जो दीन की बात करेगा लोग उसको वहाबी कह देंगे, सुन्नी कह देंगे, फलां कहेंगे, उधर ना जाना वो ये हैं, उधर ना जाना वो ये हैं, वल्लाही। और इन जकड़बंदियों में आज उम्मत पिस रही है। काफिर की गोली सिर्फ इसलिए चलती है कि आप मुसलमान हैं, वो ये नहीं पूछेगा आप सुन्नी हैं, शिया हैं, कि वहाबी हैं, कि आप बरेलवी हैं, वो सिर्फ आपको इसलिए मारने को तैयार है कि आप मुसलमान हैं। मजहब के खाने में हमारा नाम मुसलमान लिखा है। तो अल्लाह के नबी की उम्मत जो इतनी मेहनतों से जमा हुई थी, आज हमने उसको तोड़ दिया सिर्फ लड़ाइयों और अपने तासुबात की वजह से। घुटन है दिलों में, सिर्फ अंदर बड़ाई क्या कि मेरा नाम बढ़ाओ, मेरी जमात का नाम बढ़ाओ। आप जो काम कर रहे हैं अगर हमारे नाम के साथ हो तो ये एक्सीलेंट काम है, और हमारा नाम नहीं तो सॉरी, हम आपको जगह नहीं दे सकते। दिन रात के ये खेल है, दीन के काम पे जगह दीनदारों से नहीं मिलेगी, आपको दुनियादारों से मिल जाएगी। एक सिस्टर थी तो उन्होंने कुछ ऐसा अपना तजुर्बा भी शेयर किया हुआ था कि वो कहीं गए और वहाँ पे नमाज का वक्त हो गया तो मस्जिद कोई ऐसी दिख रही थी या कोई ऐसी जगह थी उनके पास, मुस्लिम कोई मुस्लिम शॉप थी या क्या थी, तो उन्होंने कहा कि भाई हमें नमाज पढ़ने दें। तो उन्होंने बहस की, नहीं औरतों की नमाज इधर नहीं होती, ये नहीं कहती, बात थोड़ी ऊंची। तो साथ बिल्कुल एक चर्च वाले थे, अंग्रेज होंगे, तो उन्होंने बातें हमारी सुन के जब देखा कि तकरार हो रही है तो उन्होंने कहा कि अगर सिस्टर आप पढ़ना चाहें तो हम डोर खोल देते हैं, आप यहाँ पढ़ लें। यकीन करें, बिलीव करें कि ये आज उम्मत मुस्लिमा की हालत है। अब हमारा चूंकि ये टॉपिक नहीं, इसमें हम बहुत लंबी बात नहीं करते, यानी आज आप देखिए जिस आयत का वजीफा कर रहे होते हैं उसी का अगर तर्जमा समझ जाए तो बात बदल जाए। तो बहुत ज़रूरत है इस बात की। अब हम इसको अपने ऊपर लेकर चलते हैं कि मेरा ईमान कब बढ़ता है और मेरा ईमान कब कम होता है। अपने ऊपर पूछिए, आप अगर अपने पिछले एक महीने का ग्राफ अपनी आंखों के सामने लाएं, जिस दिन फजर से पहले आप उठे होंगे वो दिन आपका खूबसूरत दिन होगा। पांचों नमाजें वक्त पे पढ़ेंगे आप खुश होंगे, सूरह कहफ पढ़ेंगे पूरा हफ्ता दिल खिला रहेगा, जमात से पढ़ ली नमाज तो सोने पे सुहागा, कुरान क्लास लेते हैं उन लोगों की तो बात ही ना करें, उनके तो दिल उछलते हैं, उनकी तो आंखों में ऐसे स्पार्किंग, और उनकी जिंदगी लोगों की दिन रोशन है, उनकी रातें भी रोशन है, उनके पास जो एक्साइटमेंट, जो प्लान्स और जो चीज़ें, ईमान की कमी बेशी है। और ये बात अब मैं आपको छोड़ के, इस वक्त माशाल्लाह हमारे साथ नॉर्वे की क्लास भी बैठी हुई सुन रही है, मैं उन सबको कहूंगी, यानी इस वक्त वहां एक दो चीजें ऐसी, इतना एक्साइटमेंट चल रहा है कि मैं अगर कहूं कि मुझे आज पूरी रात सोने नहीं दिया इन लोगों ने तो मुबालगा नहीं होगा। झूठ नहीं बोलना चाह रही कि सोए नहीं, सोए तो हैं, लेकिन नहीं सोने दिया कि इतना एक्साइटमेंट है उनके पास इस वक्त एक दो चीजों का, कि सोने से लेकर फजर की नमाज पे फिर यही प्लान्स, बातें बातें। आज आपको पता है कि नॉर्वे में इन्होंने क्या किया, हर क्लास को एक मैसेज रात को दिया इन्होंने कि आज जुम्मा है, जुमे का दिन सदके का दिन होता है, अल्लाह कबूल करता है, तो आज हर साथी अपने तौर पर जो भी सदका डालेगा वो हम कुरातुल ऐन प्रोजेक्ट में डालेंगे। अब वो कितना डालता है, कोई एक डालता है, कोई दो डालता है, और आज वो सारे घरों से तैयारी करके आए हैं, बल्कि मैंने भी अपने लिए एक मैसेज रखा हुआ जो मैं बाद में उनको दूंगी कि आपसे पहले तो मेरा हिस्सा डलेगा। किस चीज़ का एक्साइटमेंट है, ईमान नहीं सोने देता, उछला कूदी अंदर हो रही है, वो ऐसे खुश हैं अपने इन कामों पर कि क्या किसी की शादी होनी है या क्या किसी का घर बनना है, क्या हो गया एक स्कूल लेना है, चार घर बेच देंगे, हमारे पास ऐसे बड़े मुखलिस हैं, हम चार छः लोग अपने घर बेचेंगे हमारा स्कूल आ जाएगा। बिलीव मी, ये बातें आपने नहीं सुनी अभी, शायद आपका भी कोई एक्सपीरियंस हो, लेकिन जब मैं लोगों की ये बातें सुनती हूं हैरत हो जाती है। किस बात की खुशी है, ईमान इजहार चाहता है। अब एक ग्रुप जो था वो अपना हिस्सा डाल चुका है, अल्लाह ने उनसे जो काम लिया था, अब दूसरी क्लास की एंडिंग है, वो कह रहे हैं हमने कुरान पूरा होने से पहले हमने भी कुछ करना है। किसी का एक जुमला बड़ा प्यारा है, इनके कमेंट्स कभी पढ़ती हूँ, किसी साथी ने जो पिछले चार साल से हमारे साथ है, नूरुल्लाह नूर कोर्स का ये तीसरा साल है उनका, तो उन्होंने किसी एडमिन को पूछा होगा कि हमारे इस कोर्स की डेडलाइन क्या है, क्योंकि हर साल सब्जेक्ट्स साथ और डाली जाते हैं क्योंकि पढ़ने, तो जो एडमिन है उन्होंने जवाब दिया कि हमारी डेडलाइन हमारी डेथ लाइन है, कि हमने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन तक सीखना है, क्योंकि अभी इतना कुछ पढ़ा है, हमने कब खत्म करना है, ये हमारा कुरान खत्म होने वाली कोई चीज़ है? आप क्या कहते हैं बुखारी पढ़ के आप फारिग हो जाएंगे? आप मुस्लिम पढ़ेंगे, आप अबू दाऊद पढ़ेंगे, आप इसके अंदर से असित्ता पढ़ेंगे, आपको तो ये चस्का लग गया तो आपको तो चैन ही नहीं आएगा। तो ईमान को बढ़ाने का ये तरीका इल्म का पानी है, किसी न किसी जगह अपने आप को जोड़ लें। जिस तरीके से आप करते हैं, अगर सिर्फ इस एक क्लास में आप अपनी सहेलियों बहनों सबको ले आए, मेरा ले ये पूरी जगह भर जाए, हमारे पास जगह ना बचे। तो आइए अपने लिए भी दुआ करते हैं और दूसरों के लिए कि अल्लाह ताला हमारे ईमान को बढ़ा दे। अल्लाहुम्म ज़िदना वला तंकुसना। लंबी दुआ है लेकिन इतना ही काफी है हमारे लिए कि अल्लाह हमें बढ़ा, हमारे अंदर कमी ना कर। और हर दिन सुबह उठ के चेक किया करें, जैसे कुछ मरीज हैं शुगर चेक कर रहे होते हैं सुबह उठ के, कोई ब्लड प्रेशर चेक कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ रिपोर्ट्स हैं ना, इस तरह अपना ईमान चेक किया करें। लेकिन इसमें एक और चीज़ बहुत ज़्यादा फिक्र की इस हदीस की कि अल्लाह निकाल देगा उनको जहन्नम से जिनके दिल में ईमान है। इससे एक और बात पता चलती है कि कलमा पढ़ने वाले भी जहन्नम में जाएंगे। ये जो हमारे यहाँ तसव्वुर है ना कि जहन्नम ये काफिरों के लिए, जी ये काफिर जहन्नमी, मुसलमान जाएंगे सजाएं भुगतेंगे फिर निकलेंगे। फ्रूट्स ऑफ ईमान, उसका पहला हिस्सा सुन ले, वो एक पूरा टॉपिक है, काफी सीरीज में चला था, पहला टॉपिक में ही सारे ये मैंने हदीस सुना दी थी कि अल्लाह कैसे ईमान वाले के गुनाहों को आखिर आखिर पाक करता है, और आखिरी गुनाह हमारे जो माफ किए जाएंगे ना वो जहन्नुम की भट्टी में पका के माफ किए जाएंगे। आप सुनेंगे तो आपको पूरी तरतीब मिलेगी कि दुनिया में हम पे दुख आते हैं, बीमारियां आती हैं, फिर अल्लाह तआला से नेकियां कराते हैं, फिर मौत की सख्ती है, फिर कब्र की सख्ती है, फिर मैदान हशर की सख्ती है, फिर जहन्नुम के बुलसरात से कटवा के जहन्नुम में डालेंगे और वहां फिर भुगतेंगे अपनी सजा को, फिर अल्लाह जन्नत में डालेगा। तो कौन चाहता है इतनी मुश्किल से पाको, अगर आज ही हम दुनिया में तौबा कर लें तो। बहरहाल है तो बहुत कुछ, अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।